नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, खम्मा घड़ी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हमसे है देश की नौवीं कड़ी में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट कामायनी, और हमेशा की तरह मेरे साथ है
कबीर। पर आज तुमने हमेशा से कुछ अलग कहा, नहीं? नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, और क्या बोला था? खम्मा
खम्मा घणी,
खम्मा घणी। ओके,
जैसे मैं और तुम नमस्कार करते हैं ना, वैसे राजस्थान के गांव में लोग एक दूसरे से मिलने पर कहते हैं खम्मा घणी। और आज मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज हम बात करेंगे गांव की और वहां के नेतृत्व की।
हाँ, गांव का नेतृत्व यानी पंचायत। और महात्मा गांधी भी तो कह गए हैं कि भारत का भविष्य उसके गांव में बसता है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय शासन, यही तो उनका सपना था।
बिल्कुल ठीक। क्या तुम्हें मालूम है कबीर, 26 दिसंबर 1992 को लागू हुए संविधान के 73rd यानी 73वें संशोधन के बाद ग्राम सभा का गठन शुरू हुआ, जो आज पंचायती राज सिस्टम की नींव है। चलो बेताल से सुनते हैं बुलबुल बाग का एक किस्सा।
बेताल छब्बीसी, बेताल छब्बीसी रे।
बेताल, बेताल।
विक्रम जूनियर, तू फिर से आ गए?
हाँ बेताल, मेरी लोकतंत्र की ट्रेनिंग जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम ही तो हो मेरे मार्गदर्शक।
मार्गदर्शक? चलो बुलबुल बाग की कहानी सुनाता हूँ एक बार फिर तुम्हें।
ठीक है।
मेधावी मेंढक घुमक कर घिरनी के सौंपे हुए कामों के बीच कुछ दिनों से बहुत व्यस्त रहने लगा था। उसे अपनी घनिष्ठ दोस्त मछली से मिले हुए बहुत समय हो चुका था।
अरे कुछ लोग तो घिरनी के इश्क में ऐसे लट्टू हुए हैं कि अब दोस्तों के लिए फुर्सत ही नहीं इन्हें। अरे मेधावी मेंढक, कभी मुझ गरीब मछली की खबर तो ले लिया करो।
टर, 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 कमाल है मछली, अपने उस मूंगा महल को तुम गरीब खाना कह रही हो हैं? और वैसे मैं एक बार उस तरफ आया था पर तुम नहीं दिखी। तुम्हारी बेटी ने कहा तुम शाम तक ही लौटोगी।
अरे वो दरअसल बिटिया की फरमाइश थी एलगी मलाई खाने की, तो वो अपनी छोटी नहर है ना, बांस की झाड़ियों के नीचे बहती, उसी तरफ गई थी। वहाँ अक्सर मिल जाती थी, पर आजकल तो।
पर आजकल क्या हुआ मछली?
अरे मेंढक, बुरा हाल है। एलगी मलाई तो छोड़ो, वहाँ तो मछलियाँ मिलना भी मुश्किल है। अब खाने को कुछ नहीं होगा तो हम बेचारी कहाँ जाएंगी? पानी का स्तर इतना कम था कि मुझे लगने लगा कि मैं पत्थरों पर तैर रही हूँ। सांस तो फूली ही फूली, चोट लगी सो अलग, जैसे तैसे वहाँ से वापस आई।
हाँ, पर मछली वो नहर इतनी दूर है, वहाँ तक तुम गई क्यों हैं?
अरे मेंढक, दूर है तो क्या हुआ, है तो बुलबुल बाग का ही हिस्सा ना।
मछली मोहतरमा, पर जान जोखिम में डालकर अब तो शायद ही कोई उस तरफ जाता है।
वाह रे मेंढक, वैसे तो घिरनी और बुलबुल बाग के नेतृत्व की बड़ी बड़ी बातें हांकते हो, और बुलबुल बाग के एक हिस्से की बिल्कुल भी कदर नहीं, तो ये है तुम्हारा लोकतंत्र। जो आग से ओझल हो उसे भुला दो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वहाँ पक्षी और जानवर नहीं रहते? पर वो किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? शायद बूढ़े बरगद के पास जाकर चप्पल चींटी से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ,
अरे अरे रुको, मैं भी आता हूँ।
मछली ने चप्पल चींटी के पास पहुँच सारा किस्सा सुनाया।
तो ये बात है मछली, मुझे खुशी है कि तुम छोटी नहर की खबर लेकर आई। इतने बड़े जंगल में ऐसी कितनी ही नहरें झाड़ियाँ देख रेख से वंचित रह जाती हैं। पहले मुआयना करना पड़ेगा, चलो छोटी नहर की ओर चलते हैं।
चप्पल चींटी जब छोटी नहर तक पहुँची तो हैरान रह गई।
हाँ मछली, तुमने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ की हालत देखकर मुझे शर्मिंदगी है कि बुलबुल बाग में लोकतंत्र का परचम तो फहरा गया, पर ऐसी कितनी ही जगह हमसे छूट गई होंगी। मेरी नज़र से ऐसी दूर दराज की जगहों में स्थानीय नेतृत्व होना जरूरी है। मेंढक, हमें जल्द से जल्द इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए।
पर चींटी जी, ये सब होगा कैसे? बूढ़ा बरगद यहाँ से बहुत दूर है, और स्थानीय नेतृत्व हम कैसे ला पाएंगे हैं?
हम एक छोटी नहर समिति बनाते हैं, यही समिति देखेगी कि कैसी छोटी नहर तक संसाधन मुहैया हो, कैसे यहाँ का जनजीवन फिर से शुरू हो जाए। और बल्कि इस समिति की ये भी जिम्मेदारी होगी कि ऐसी और जगहें बुलबुल बाग में ढूंढें जहाँ बूढ़े बरगद की नीतियाँ नहीं पहुँच पाती। और मेंढक मछली, हम तुम्हें छोटी नहर समिति के गठन की बागडोर सौंपते हैं।
ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर शायद मुझे मालूम है कि क्या करना है। इस नहर के आसपास के जानवरों और पक्षियों को इकट्ठा कर उन्हें नहर के विकास की ओर साथ मिलकर काम करना होगा।
मछली, मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करूँगा।
तो क्या समझे? सही जवाब देना ताकि मैं उड़ जाऊँ। जानबूझकर गलत जवाब दोगे तो भस्म हो जाओगे।
बुलबुल बाग का यह किस्सा सुनके मुझे समझ आया है कि दूर दराज की जगहों के लिए स्थानिक नेतृत्व की जरूरत होती है।
सही जवाब, और ये मैं चला।
अरे सुनो बेताल, बेताल मेरी बात सुनो, बेताल, अरे सुनो।
तो कबीर, अब तुम्हें समझ में आया कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय शासन कितना जरूरी है?
हाँ बिल्कुल समझ में आ गया कम्मो।
तो कबीर, पंचायत के दो मुख्य कार्य होते हैं, एक अनिवार्य यानी मैंडेटरी और दूसरा स्वनिर्णयगत यानी डिस्क्रिशनरी। अनिवार्य कामों में आता है सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, गांव तक जाने वाली सड़कों की देखरेख, सरकारी इमारतों की देखरेख और संरक्षण, और ऐसे ही बहुत से काम। वहीं स्वनिर्णयगत यानी डिस्क्रिशनरी कामों में शामिल हैं लघु उद्योगों को बढ़ावा, बिजली उपलब्ध कराना, खेती बाड़ी और डेयरी विकास। इसके अलावा पंचायत को जिला परिषद के निर्देश अनुसार और भी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। और अब थोड़ा और इंस्पायर होने के लिए जानकार हैं कहते के हमारे अगले सेगमेंट में मिलते हैं भंवर मेघवंशी जी से। भंवर जी राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ कार्य करते हैं और पत्रकार भी हैं।
भंवर जी, हमने अपने कार्यक्रम के पिछले दो अंकों में नागरिकता और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की, थोड़ा आप बताएं कि इन प्रावधानों के पीछे क्या मूल सिद्धांत है।
आप देख सकते हैं कि जब संविधान लागू किया गया तब संविधान सभा में ये कहा गया था कि अब से एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि आज़ादी से पहले वोट देने का जो अधिकार था वो कुछ ही लोगों को था। जैसे कि दो तरह के वर्ग वोट देते थे, एक जो स्नातक तक शिक्षा प्राप्त लोग थे वो लोग वोट दे सकते थे, या फिर जो लोग राजशाही से आते थे वो लोग वोट दे सकते थे, आम नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये भारतीय लोकतंत्र की वजह से हो पाया कि जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो ये तय किया गया कि यहाँ सबको वोट देने का अधिकार होगा, कोई उससे वंचित नहीं किया जाएगा। जब ये कहा गया कि सब वोट दे सकते हैं तो उसी में निहित था कि सब वोट ले भी सकते हैं, यानी कि आप वोट किसी को देंगे वैसे ही आप चुनाव लड़ करके वोट ले भी सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि शिक्षा जैसी चीज़ें कहा जा रहा है कि आपको इतना शिक्षित होना ज़रूरी है, आपके घर में टॉयलेट होना ज़रूरी है, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं फिर से हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र है और जो सबको समान अवसर देता है, सबको मताधिकार का अधिकार देता है, उससे कहीं ना कहीं दूर कर रहा है।
तो 73वें और 74वें संशोधन, जिनमें पंचायती राज और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई है, इन्हें पूरी तरह धरातल में उतारने में अभी क्या काम बाकी है और किस तरह की सफलता प्राप्त हुई है?
पंचायती राज जो है वो दरअसल लोकतंत्र को धरातल पर उतारने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि देश का हर नागरिक लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति विधानसभा का मेंबर नहीं हो सकता, राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता है, लेकिन ये खूबसूरती है कि हर नागरिक ग्राम सभा का मेंबर हो सकता है। और ये कोई एक आदर्श जैसा नहीं है कि एक किसी आदर्श गाँव के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाके देखेंगे तो ये हुआ है। और कहीं ना कहीं सत्ता जो केंद्रीकृत थी गांवों में भी, वो सत्ता विकेंद्रीकृत हुई और सत्ता बिल्कुल झोंपड़ी तक भी पहुंची। पहली बार ये हुआ कि ग्राम पंचायतें खुलने लगी, ग्राम सभाएं बैठने लगी, वहां पर सारे अधिकारी भी आने लगे और उनके पास इतना क्षमता और पावर आए कि वो अपने गांव में कहाँ नाली बनेगी, कहाँ सड़क बनेगी, किन के खेतों का विकास होगा, जलाशय का पानी कब छोड़ा जाएगा, ऐसे जो निर्णय थे उनके लिए उनको भाग करके किसी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ा, किसी बड़े राजनेता के पास नहीं जाना पड़ा, लोग खुद निर्णय करने लगे। तो पंचायती राज ने दरअसल आम जनता को लोकतंत्र का स्वाद चखाया है। और 74वें संविधान संशोधन ने जो नगरीय निकायों को, जिसमें नगर पालिकाएँ, परिषदें और नगर निगम को काफ़ी सशक्त किया है, लेकिन अभी भी ये कहा जाना चाहिए या ये चुनौती अभी भी है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने जो शक्तियाँ दी और उसके बाद जिस तरीके के फंड फंक्शन और फंक्शनरीज दिए जाने चाहिए थे वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाए हैं। और इस वजह से जितना कर सकते हैं स्थानीय निकाय, पंचायती राज की स्थानीय संगठन, वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि वित्त कार्यक्रम और कार्यकर्ता की जो मांग इन संस्थाओं की है उनको ईमानदारी से दिया जाए तो अच्छा हो सकता है।
भंवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, शुक्रिया।
और अब बारी है हमारे सवाल की, बिल्कुल बेताल की तरह।
पर इसका सही जवाब देने से हम उड़ नहीं जाएंगे, बल्कि आपको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो सवाल है,
भारत के राजपत्र में 73वां संशोधन कब दर्ज और लागू हुआ, जिससे पंचायती राज के जरिए स्थानीय शासन कब एक हकीकत बना?
तो मोबाइल उठाइए और कॉल कीजिए 07966210428 पर।
दिए गए ऑप्शंस के लिए बटन दबाइए और पाइए हमारा सरप्राइज गिफ्ट। कॉल निशुल्क है। आइए दिल से मैं सुनते हैं,
हम होंगे कामयाब।
नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
हमसे है देश कार्यक्रम कैसा लगा, हमें आप जरूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है freedom@ideosyncmedia.org। SMS और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9958747972।